ओम शांति। हमारे सन्मुख उपस्थित हैं आत्म प्रकाश भाई। आत्म प्रकाश भाई भी 41 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं और साथ साथ 38 वर्षों से आपने अपने जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित की। पांडव भवन में ही स्टार्टिंग से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। स्वर्ण पदक किसको प्राप्त होता है? जरूर मेघावी छात्र होता है, उसे प्राप्त होता है। तो आप पढ़ाई में भी मेघावी छात्र रहे हैं और साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई में भी मेघावी छात्र। बाबा के एक आदर्श विद्यार्थी की तरह पढ़ाई पर इतना अटेंशन, बाबा की पढ़ाई पर स्वयं भी अटेंशन रखते हैं और औरों को भी अटेंशन दिलाते हैं। तो मैं आत्म प्रकाश भाई से निवेदन करती हूँ कि फरिश्ता स्वरूप हम कैसे बने, या फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, वह हमें स्पष्ट करें।
ओम शांति। हमारे ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। 2 वर्ष पहले बाबा ने कहा था, कुछ भी हो इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्योंकि जानी जाननहार बाबा, हम बच्चों के फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा कराना चाहते हैं। हर क्लब हम बाबा के बच्चों ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता की सेवा की है, इसकी सुंदर यादगार विदेशों में जहां तहां एंजल्स ही एंजल्स दिखाई देते हैं, जहां तहां फरिश्तों की ही स्टैचूस यादगार दिखाई देते हैं। और भारत में परियों का गायन भी किया जाता है। तो कहने का मतलब, हर क्लब हम बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से फरिश्ता स्थिति को अपनाया है और उस स्थिति के द्वारा बेहद की मनसा सेवा भी सफलतापूर्वक किए हैं, इसलिए ये यादगार अभी तक पाया जा रहा है। जब हम फरिश्ता जो शब्द है उसका उच्चारण करते हैं, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है और जब उसका उच्चारण करते हैं तब अलौकिकता के भाव हमारे मानस पटल पर उभरने लगते हैं। फरिश्ता, फरिश्ता जो शब्द हैं 5 शब्दों के संधि निग्रह से बना हुआ है। फ, र, इ, छ, ता, फरिश्ता। उस शब्द में ही उसका अर्थ समाया हुआ है। मोटे रूप से कहा जाता है फरिश्ता, फर्श वासियों से उसका रिश्ता नहीं होता है, नश्वर से उसके कोई रिश्ते नहीं होते हैं, केवल ईश्वर से सभी उसके रिश्ते होते हैं। तो फ अर्थात जो फर्श से परे अर्शवासी होकर रहता है, सूक्ष्म वतन वासी होकर रहता है, ये उसकी पहली क्वालिटी है। यहां रहते हुए भी बुद्धि का पैर उसका यहां से उठा हुआ दिखाते हैं, क्योंकि वो फर्श से न्यारा रहता है और सुवासी बनकर रहता है। र अर्थात रॉयल्टी और रियल्टी उसके जीवन में दिखाई देती है। रॉयल्टी जैसे ब्रह्मा बाबा सिंपल भी थे और सैंपल भी थे। सिंपल और सैंपल एग्जाम्पल। लेकिन बाबा के चलन में व्यवहार में वो रॉयल्टी दिखाई देती थी। और रियल्टी अर्थात अंदर बाहर सब साफ हो, दोहरी दोहरा व्यक्तित्व न हो, जैसा अंदर वैसा बाहर, उसको कहते हैं रियलिटी जीवन में होना। फर ई ये अर्थात ईमानदार, ये अर्थात ईमानदार। दुनिया में अगर कोई किसी को धोखा देता है तो कहते हैं ये बेईमान है, ये बेईमानी करता है। तो स्वयं को आत्मा के बजाय देह समझना अर्थात स्वयं को ठगना। तो स्वयं से ईमानदारी अर्थात असली स्वरूप में सदा स्थित होना। यज्ञ से ईमानदार, परिवार से ईमानदार और स्वयं से ईमानदार, इसको कहते हैं ईमानदार। फर ई श अर्थात शक्तियों के खजाने से भरपूर होना। क्योंकि मानवता को शांति और शक्ति का दान हमें देना है तो हमारे पास शक्तियों का स्टॉक बहुत अच्छी तरह से जमा हो, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। और ता अर्थात तत्पर रहने वाला, एवर रेडी रहने वाला। जब ऑर्डर मिले सेवा की, सेवा पर तत्पर। जैसे मम्मा हमेशा हाँ जी बाबा कहती थी, जब बाबा कुछ भी बात के लिए कहते हैं मम्मा हाँ जी बाबा कहते थे, एवर रेडी। फरिश्ते के पैर ऊपर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो एवर रेडी रहता है सेवा के लिए। गवर्नमेंट के पास सेंट्रल पुलिस फोर्स होता है, मिलिट्री होता है, ऐसे पांडव गवर्नमेंट के पास स्पिरिचुअल आर्मी है फरिश्तों की। फरिश्ते पांडव गवर्नमेंट के स्पिरिचुअल आर्मी है। जैसे जैसे इस धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे, फरिश्ते दौड़ते हुए उड़ते हुए जाएंगे और अनेक आत्माओं को सल्वेशन देंगे, मदद देंगे और अनेकों की दुआएं भी वो प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को लाइट के शरीरधारी अनुभव करो। क्या ये संभव है? ये 50-60 किलो वजन का शरीर सारे दिन भर लेकर हम सेवा क्षेत्र पर सेवा करते हैं, तो इस स्थूल शरीर को लाइट का शरीर समझकर सेवा करना क्या ये संभव है? बोलो। हाँ जी, अगर संभव नहीं होता तो बाबा मुरली में नहीं कहते, अर्थात वो संभव है। लेकिन ये बात थोड़ी सी कठिन लगती है, मेरे गले में भी ये बात नहीं उतरती थी कैसे ये संभव होगा। लेकिन लगभग 15 वर्ष पुरानी बात है, ओम शांति भवन में 18 जनवरी के दिन मुरली चली। मुरली के बाद सभी शांति स्तंभ पर आकर सभी ने सामूहिक 3 मिनट का योगाभ्यास किया, मैं भी उसमें था। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर ऐसा बैठा था तो अचानक मुझे बाबा से एक बहुत पावरफुल टचिंग मिल गई कि बच्चे एक्सरे जो होता है, एक्सरे वो अपने शरीर से ट्रांसफर होता है और किसी भी इंटरनल ऑर्गन का फोटो हमें निकाल कर देता है। एक्सरे इस शरीर से पेनेट्रेट होते हैं किरणें, तो ऐसे यस रेजेस अर्थात आत्मा के प्रकाश की जो किरणें हैं उससे भी प्रखर हैं, वो भी इस शरीर से ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आत्मा रूपी बल्ब यहाँ जल रहा है और उसकी जो किरणें हैं प्रकाश की सारे शरीर से ट्रांसफर हो रही हैं। ये काया जैसे कि ट्रांसलाइट की तरह ट्रांसपेरेंट मुझे अनुभव होने लगी और जैसे हल्का फुल्का स्वयं को अनुभव करने लगा, सूक्ष्म वतन की ओर मैं उड़ने लगा। उसके बाद सूक्ष्म वतन में कुछ लंबे समय तक बाबा के साथ रहा और बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करता रहा। तो इस अनुभूति के बाद मेरे मन में जो शंका थी, ये फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना थोड़ा कठिन है, वो शंका निकल गई। ये अनुभव करना संभव है, केवल आवश्यकता है दिल से कुछ एक बातों पर अभ्यास करने की। और इसमें भी मुख्य 5 बातें हैं, उन 5 बातों पर अगर हम अभ्यास दिल से करते हैं तो गारंटी है दिन प्रतिदिन हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है, ये गारंटी है। पहली बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की दुनिया अर्थात सूक्ष्म वतन हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहें, न केवल इमर्ज रहें लेकिन उस वतन में हम बार बार जाते रहें, उस वतन का यूज करें, उसका बहुत अच्छी तरह से फीलिंग अनुभव करें और फरिश्ता स्थिति को निखारते रहें। यज्ञ में सबसे पहले फरिश्तों की दुनिया का साक्षात्कार गुलजार दादी जी को हुआ था। मैं 91 में, ये जो हिस्ट्री हॉल है इसके पीछे गुलजार दादी जी का रूम है, उनके साथ 3 घंटा जाकर बैठा, उनसे बातें पूछने लगा कि आखिर वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, बाबा आपके तन में कैसे आते हैं, उसकी क्या विधि है, ये सब बातें मैंने उनसे पूछी और ज्ञानामृत मैगजीन में आर्टिकल भी लिखा, वो छपा हुआ है, हृदय को मोहित करने वाली दादी हृदय मोहिनी, इस टाइटल से वो आर्टिकल ज्ञानामृत में छपा हुआ है। तो दादी जी ने कहा चंद्र सूर्य तारा गण से पार एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश से प्रकाश उस दुनिया में सदा रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन एक ही चंद्रमा आसमान में होता है लेकिन सारे विश्व के ग्लोब को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश उस सूक्ष्म वतन में हमेशा रहता है। वहां जो फरिश्ते होते हैं उनकी जो भाषा होती है नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स के द्वारा फरिश्ते आपस में बातें करते हैं। वहां की जो कारोबार चलती है संकल्प शक्ति के आधार पर चलती है, बाबा जो भी दर्श इमर्ज करना चाहते हैं, संदेशी बहन को दिखाना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, 1 सेकंड में संकल्प शक्ति के आधार से उसको इमर्ज करते हैं और वो दिखाते हैं। तो कहने का मतलब सूक्ष्म वतन की दुनिया हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा स्पष्ट इमर्ज रहे और उसको हम बार बार वहां जाकर यूज करें और उस वतन पर अपना अधिकार बढ़ाएं। जितनी बार वहां जाएंगे उतनी बार अनुभव अलग होगा और उतना हमारा उस घर पर अधिकार बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमारे देह रूपी मकान में सदा आत्मा की लाइट जलती रहे, कभी भी वो बुझे नहीं। ब्रह्मा बाबा को मधुबन में जहां पर भी देखते थे बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के मकान में, देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी। स्लोगन लिखें, जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। इस बंगले में अंधेरा था, भूतों का ये बंगला बन गया था, तो भूतेश्वर बाबा ने लाइट जला दी, आत्मा की लाइट जलते ही सारे भूत भागने लगे, इसलिए शिव बाबा को भूतेश्वर भी कहते हैं, भूतों को भगाने वाला। तो इस हाउस में जब आत्मा का लाइट जलती रहती है तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होता है और लंबे समय तक होती है तो ये हाउस माइट हाउस अनुभव होने लगता है। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति अनुभव करना। दादी जी एक बार अनुभव सुना रही थी, ब्रह्मा बाबा मेरे हाथ में हाथ मेरा लेकर मुझे मधुबन की सैर करा रहे थे तो ऐसा अनुभव होता था बाबा का हाथ एक लाइट का हाथ है, हड्डी मांस का नहीं है, एकदम लाइट का हाथ है, हल्का फुल्का है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा का आत्मा का स्वरूप आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से निरंतर रहता था। समझा? डबल लाइट की स्थिति हो, एक लाइट आत्मा और दूसरा लाइट हल्कापन, मन बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। तीसरी बात जो है, डबल लाइट की स्थिति हमारी होगी तो फरिश्ते सदा उड़ते हुए दो नजर आते हैं, उसके लिए हमें स्वयं को सदा हल्के रहना अनुभव करना बहुत जरूरी है। जितना बिजी उतना इजी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सेवा का जो बर्डन है, जिम्मेदारी का जो बोझ है वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन सेवा की जिम्मेदारी का बोझ बढ़ते हुए भी स्वयं को सदा लाइट अनुभव करना ये एक कला है। मैं दादी जी के साथ 25 साल तक मधुबन में रहा, मैंने कई बातें दादी जी से सीखी, मैं हमेशा दादी जी पर मेरा ध्यान रहता था और कई बातें उनसे मैंने सीखी। तो एक बार मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था तो दादी जी को पूछा मैंने प्रश्न कि दादी जी मुझे सीधा जवाब चाहिए, घुमा फिरा के नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए, सीधा जवाब चाहिए। प्रश्न मेरा पूछता हूं, बोलो प्रश्न कौन सा है। मैं देखता हूं आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन मैंने नहीं देखा, जबकि 7,000 सेवा केंद्र की संचालन आप कर रही, इतना बड़ा मधुबन का कारोबार, बेहद यज्ञ का आप चला रही हैं, एकदम छोटे बच्चे के तरह हल्की फुल्की लाइट रहती है। क्या सदा लाइट रहने का राज है मुझे आप बताइए। तो दादी जी ने बताया, पहली बात तो मैं स्वयं को सदा निमित्त समझती हूं, करावनहार बाबा है, मैं केवल निमित्त हूं, केवल निमित्त, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैं ये कठपुतली हूं, मैंने बुद्धि रूपी रस्सी हाथ में बाबा के दी है, जैसे बाबा नचाता है वैसे मैं सेवा करती हूं, बस निमित्त समझती हूं। दूसरी बात, हमेशा एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा को, दूसरे कंधे पर शिव बाबा को अनुभव करती हूं, दोनों दुनिया के सबसे पावरफुल सपोर्टिंग फोर्सेस मेरे पास उपलब्ध हैं, कोई भी बात आती है समस्या आती है तो मुझे ये सपोर्ट करते हैं, उसके कारण हर बात जो है बहुत सहज रीति से पास होती है और मैं स्वयं, जिससे मैं स्वयं को एकदम हल्की फुल्की अनुभव करती हूं। और सदा हल्के रहने के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति है। कौन सी युक्ति है बोलो? हाँ, बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे उनके जीवन में एक लेसन बहुत प्रैक्टिकल नेचुरल दिखाई देगा, नथिंग न्यू का पाठ उनका बहुत पक्का होगा। जो भी चल रहा है केवल रिपीटेशन है, केवल रिपीटेशन, कोई भी बात नई नहीं है। जो भी ड्रामा का दर्श हमारे सामने आता है, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, केवल और केवल रिपीटेशन है, नथिंग न्यू। जब नथिंग न्यू हम समझते हैं तो बहुत हल्का फुल्का रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है और बहुत अच्छी तरह से ड्रामा के हर सीन को हम एंजॉय करने लगते हैं, उसका हम भरपूर आनंद लेते हैं रहते हैं। इस हॉल में हम ऐसे बैठे हैं, इस रीति से बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं हा? भाई साहब यहाँ बैठे हैं पहली बार बैठे हैं? कितनी बार बैठे हैं? अनगिनत बार बैठे थे इसलिए बैठे हैं, और अनगिनत बार बैठते ही रहेंगे। देखो ड्रामा का कितना सुंदर राज बाबा ने सुनाया बताया, सदा हल्के रहने के लिए, समझा? चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए स्वयं को निर्बंधन अनुभव करना जरूरी है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी नहीं हो, निर्बंधन स्थिति, स्वतंत्र पंछी ही उड़ता पंछी बनता है, इसलिए किसी भी प्रकार का बंधन या रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा रूपी पंछी को बंधी नहीं हो। दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती हैं सारे दिन भर में, या तो व्यक्ति के तरफ आकर्षित होता है या हमारी बुद्धि वैभव के तरफ आकर्षित होती है। ये दो रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती हैं, व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना या वस्तु के तरफ आकर्षण होना। कोई भी रस्सी मुझे बंधी नहीं हो, व्यक्ति के तरफ थोड़ा सा भी आकर्षण होता है तो विशेष वो बाबा के तरफ बुद्धि को ट्रांसफर करने के लिए, बाबा से वो संबंध अनुभव करके बुद्धि को वहां से न्यारे करना है और बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते रहना है, और बाबा ही मेरा संसार है ऐसा मुझे अनुभव करना है। बाबा एक, बाबा मेरा संसार है। जैसे कृष्ण को ग्लोब पर दिखाते हैं, बड़े मजे से बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, ग्लोब के ऊपर बिठाया हुआ दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ग्लोब में कोई भी बातें जो हैं उससे उसका रिंचक मात्र भी लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है बोलो माताएं? मोह ना उसका नाम है मोह, ना उसमें थोड़ा भी मोह नहीं है। किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के तरफ उसका रिंचक मात्र भी मोह नहीं है, इसलिए इसको मोहन कहते हैं। ठीक है ना? तो कृष्ण के साथ अगर हमें बैठना है तो हमें भी ऐसी स्थिति, निर्मोही स्थिति बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। वैभव के तरफ अगर आकर्षण होता है तो उसके लिए हम अनुभव ऐसा करें कि मुझे यहाँ से घर वापस जाना है, ये जब बात बुद्धि में बैठ जाती है तो किसी भी चीज के तरफ हमारी बुद्धि नहीं आकर्षित होती है, मुझे यहाँ से जाना है। बढ़िया गेस्ट हाउस है, सोने के दरवाजे हैं, हीरे के जो चमक के लिए सब कुछ बढ़िया है, एक दो दिन गेस्ट हाउस में रहते हैं लेकिन बाद में आपको वहां से जाना है, कितना भी बढ़िया होगा तो भी उससे आपका लगाव नहीं होगा, ये तो गेस्ट हाउस है। तो रेस्ट हाउस कौन सा है हमारा? परमधाम। ये तो दुनिया पुरानी माया की गेस्ट हाउस है, कितनी भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं कुछ काम के नहीं है, मुझे यहां से जाना है बस। ये जब बात बुद्धि में बैठ जाती है तो बुद्धि हमारी न्यारी प्यारी हो जाती है और एकदम स्वयं को निर्बंधन अनुभव करने लगते हैं। हम एकांत में बैठकर चेक करें, ऐसा कोई स्थान तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है, अगर जाती है तो उसको वहां से हटाने के लिए विशेष प्रयास करें और उस बुद्धि को बाबा के तरफ ट्रांसफर करने का पूरा प्रयास करें। समझा? इस संसार में केवल दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। ये दो ही चीजें, ईश्वर या नश्वर, किससे योग लगाना है, ईश्वर से लगाना है या नश्वर से लगाना है, चॉइस है आपके हाथ में, चॉइस है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, चॉइस का पूरा फायदा लेता है, अपनी बुद्धि को ईश्वर से जुटा कर रखता है और उनसे खजाने जोड़ लेकर स्वयं को माला माल करने में ही लगा रहता है। इसमें हमें लोभी लालची बनना है, बुद्धि को सेठ करते हैं तो सेठ बन जाते हैं, हमारे पास बहुत खजाने भरपूर हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि को कहाँ करना है, सेठ, ऊपर सेठ करना है, अब बाबा के तरफ सेट करना है। तो कभी भी अपसेट हम होते नहीं हैं और सर्व खजानों से भरपूर होते रहते हैं। ठीक है? पांचवी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को अपने सामने इमर्ज करना है, अपने ही संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को इमर्ज करना है। वो कैसा फरिश्ता स्वरूप है हमारा, ऐसा ही उसका आकार है, ये हड्डी मांस का शरीर है, वो लाइट का शरीर है, दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर है और तीन बातों की संपन्नता उसमें है, ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय गुणों से संपन्न और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, तीन बातों की संपन्नता उसमें सदा होती है। चेहरा दिव्य गुणों से श्रृंगार किया हुआ हो, बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मुझे पहना हुआ है और मेरे बुद्धि के तार एक बाबा के साथ परम धाम में जुटी हुई हैं, ऐसी स्थिति हमें संपूर्ण फरिश्ता स्थिति सामने इमर्ज करनी है और उसके साथ ये जो पुरुषार्थी स्वरूप है उसको तुलना करनी है, उसकी भेंट करनी है, कंपैरिजन करनी है और जल्दी ही वो स्थिति प्राप्त करने के लिए अंदर पुरुषार्थ करने के लिए तड़फन हमें रखनी है। जल्दी ही मुझे ये फरिश्ता स्वरूप प्राप्त करना है, मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, ऐसा हमें अनुभव करना है। जिस बाबा के बच्चे ने जिस दिन जन्म लिया है उस दिन से उसका फरिश्ता स्वरूप जो है सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ में पास में सदा मर्ज रहता है, बाबा जब चाहे उसको देख सकते हैं और ये पुरुषार्थ स्वरूप है, इसके साथ उसकी तुलना बाबा करते रहते हैं किस स्पीड से ये दोनों स्वरूप समीप आ रहे हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा यहाँ रहते थे मधुबन में, तो एक संदेशी बहन वतन में चली गई, तो वतन में उन्होंने लाइट का ब्रह्मा बाबा देखा तो वो तो कंफ्यूज हो गई, ब्रह्मा बाबा तो नीचे हैं मधुबन में हैं, भाई ये ब्रह्मा बाबा कहाँ से आए, लाइट के ब्रह्मा बाबा। उसने आके दाद बाबा को बताया, बाबा के भी समझ में नहीं आवे, बाबा ने दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा ऊपर सूक्ष्म वतन में, फिर शिव बाबा ने उसका राज खोला कि ये है पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा और ये है उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा का। तो जब ये दोनों ये पुरुषार्थ स्वरूप जब संपूर्ण बनता है तो दोनों एक हमारे हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को सामने इमर्ज करना है, उसके साथ में बहुत अच्छी तरह से कंपेयर करते रहे, कोई ऐसा कड़ा संस्कार है जिसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं उसमें सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, तो बहुत सुंदर तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, उसका पॉजिटिव स्वरूप हमें अपने फरिश्ता स्वरूप में देखना है और उस पॉजिटिव स्वरूप को या शक्ति को या गुण को अपने में आह्वान करना है, इन्वोक करना है और जल्दी ही उस कमी को निकालना है। तो फरिश्ता स्थिति के बारे में बातें तो आपने अच्छी तरह से समझ ली, लेकिन फरिश्ता स्थिति को कर्म क्षेत्र पर बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है तो तीन प्रकार के प्रयोग आपको बार बार अपने कर्म क्षेत्र पर करने हैं, गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। आप 18 जनवरी के दिन मधुबन अगर आएंगे तो मधुबन मधुबन नहीं दिखाई देता है, मधुबन ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया ही, ये सूक्ष्म वतन अनुभव होता है। सभी बाबा के प्यार में खोए हुए हैं, सभी अव्यक्त हैं, सभी ने मौन धारण किया हुआ है, सभी लाइट के स्वरूप में अनुभव होते हैं, बहुत मस्ती से 18 जनवरी का सीन यहाँ का होता है। तो पहला प्रयोग करना है कि मुझ आत्मा ने स्थूल शरीर धारण किया हुआ है और स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूं, आपका अनुभव बिल्कुल ऑर्डिनरी होगा, साधारण होगा, ये तो आप करते हैं। अभी दूसरा प्रयोग क्या करना है, अपने कॉन्शियस को थोड़ा टर्न करना है, चेंज करना है, श्रेष्ठ बनाना है कि मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर धारण किया है, लाइट का शरीर धारण किया है, लाइट के जमीन पर चल रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपका अनुभव होगा, देखने वाला भी आपको फरिश्ता ही देखेगा। तीसरा प्रयोग करना है, कॉन्शियस को चेंज करना है, मुझ आत्मा ने रुई का शरीर धारण किया है, कॉटन का शरीर धारण किया है, रुई की जमीन पर मैं चल रहा हूँ, आपका अनुभव बहुत हल्का फुल्का होगा, फरिश्ता ही आप नजर आओगे, ये केवल अपने भान को श्रेष्ठ मेंटेन करने की युक्ति है। एक दिन क्या हुआ, ये जो मेडिटेशन हॉल के बाहर ये जो कमरे हैं ना, कमरे नहीं थे, यहाँ एक पहाड़ी थी। दोपहर को 2 बजे का टाइम था, सब आराम कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अकेले निकर और बनियन पहनकर गोबर के गोले इस पहाड़ी पर बना रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे से मेन गेट से अंदर आके देखने लगा, इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस संस्था का मुखिया कौन है मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो पहाड़ी पर एक बूढ़ा बाबा काम कर रहा है, चलो उनसे मिलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। जैसे वो चल के यहाँ आया, बाबा के पास खड़ा होकर जैसे बाबा ने उसको दृष्टि दी, उसको बाबा का फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और बाबा की वो पैर पकड़ने लगा। ये व्यक्ति काम क्या कर रहा है, इतना साधारण काम कर रहा है, गोबर के गोले बना रहा है, लेकिन ये तो एक बहुत अलौकिक फरिश्ता है। तो कर्म भले साधारण हो, लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो। क्योंकि देखने वाले के मानस पटल पर हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन होता है और उसी अनुसार हम उसको हमारी स्थिति का साक्षात्कार होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मधुबन, ये विश्व के ग्लोब पर मधुबन ही ऐसा एक स्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शक्तिशाली है और बहुत भाग्यशाली स्थान है। ये परमात्मा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि ये है। इस पर रहने का, 2-3-4 दिन रहने का भाग्य मिलना बहुत ऊंचे भाग्य की निशानी है, लेकिन यहाँ रहकर इसके वातावरण को एक एक पल अनुभव करना, यूज करना और अपनी स्थिति को मेंटेन करना, ये हमें गोल्डन चांस का पूरा फायदा लेना है। एक प्रकार की लॉटरी है, इस लॉटरी का मुझे बहुत अच्छी तरह से फायदा लेना है, इसका हमें ध्यान देना है। एक एक पल हमारा सफल हो, बाबा की याद में, बाबा की मस्ती में बीत जाएं, बस ऐसा ही एहसास, ऐसा ही अभ्यास हमारा आंतरिक चलता रहे, बस। समझा? इसलिए अनुभूतियों को इकट्ठा करना है। ज्ञान तो हमने बहुत सुना, बहुत सुनाया, अभी ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है अलौकिक अनुभूतियां करना। अनुभूतियों का धन हमें बढ़ाना है। ब्राह्मण संसार में धनी आत्माएं वो हैं जिन्हों के पास में अलौकिक अनुभूतियों का धन प्रचुर मात्रा में है। समझा? इसलिए बहुत सुंदर अनुभूतियां अलौकिक मुझ आत्मा के पास बढ़ती रहे, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो अभी हम 10 मिनट के लिए पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कष्ट आपको देता हूँ, थोड़ा खड़े होके एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़े झूल रहे कोई कोई झूले में, खुद को शाबाश। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ, मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश। चारों ओर फैल रहा है, मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओ सुंदर आभा मंडल लाइट का औरा अनुभव हो रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते रहते हैं। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूँ। जो मैं अपने सत्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ। और अनुभव भी कर रही हूँ। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ ओहो, कितना प्यारा है यह सूक्ष्म वतन। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके प्रकटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति आत्मा ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ। निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ। ओह कितनी सुंदर न्यारी और प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल लीला दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा घर मूल वतन प्यारा परम धाम। ओहो मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राण आधार सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिवपिता मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तियों की प्रखर किरणें तेजस्वी किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा था शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में धारण कर रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ, शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही हैं। इस वातावरण को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर रीति से फरिश्ता स्वरूप को न सिर्फ स्पष्ट किया परंतु साथ साथ कमेंट्री के द्वारा आपको अनुभव भी कराया। इसलिए आत्म प्रकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस स्थिति को एक हाथ की ताली, क्योंकि हम फरिश्ते हैं आवाज में ना आए, तो हम धन्यवाद करते हैं और पुनः फिर हम आपसे जरूर मिलेंगे।